اسماء الحسنی پر تدبر کے سلسلے میں ہم آج اللہ تعالیٰ کے پیارے نام المبدی کو دیکھیں گے۔ بہت ہی یونیک نام ہے، یعنی اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہمیں الگ سے نہیں ملتا، لیکن قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا۔ تو اس میں جو صفت یا جو فعل ہے یبدی کا، وہ اسی سے لفظ المبدی ہے، اور مبدی بدع سے ہے۔ بدع کہتے ہیں کسی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنا، ابتدان وجود بخشنے والا۔ یعنی آج تو دنیا میں یہ ایک سلسلہ چل نکلا، لیکن اس سلسلے کا آغاز کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ وہی ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اسی کا اپوزٹ المعید ہے۔ مبدی کون ہوتا ہے؟ جو پہلی دفعہ پیدا کرے، اور المعید کون ہوتا ہے؟ جو اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور جو مبدی ہے، پھر اس کے لیے المعید ہونا کیوں نہ ممکن ہے؟ اس لیے اکثر اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات اکٹھی پیش کی جاتی ہیں، کہ وہی پیدا کرتا ہے، وہی پیدا کرے گا۔ جیسے سورۃ بروج کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے، انہو ہو یبدی و یعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ پہلی دفعہ بھی اسی نے پیدا کیا، اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اور دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی صفت ہے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد اپنے کاپی رائٹس رکھتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ہم نے فلاں جگہ سے لی، فلاں اس کا بنانے والا تھا، لیکن ہم نے ان سے آئیڈیا لیا۔ یعنی کسی کے آئیڈیے کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، پھر اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جس نے پہلی دفعہ وہ آئیڈیا دیا، اس کی شان اور اس کا نام جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آج بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہیں نا، لیکن جس نے ریسرچ کے نام پہ پہلی دفعہ ریسرچ کی ہوگی، اس کا مقام بہرحال کوئی دوسرا نہیں پا سکتا۔ اگر کسی نے پینسلین ایجاد کی، آج بھی بہت ساری کمپنیاں پینسلین کی مختلف قسم کی دوائیاں اور ٹیوبس بناتی ہوں گی، لیکن جو اس شخص کی شان تھی یا اس کا نام اس میں آتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں ملتا۔ تو لہٰذا مبدی کون ہے؟ جو پہلی بار کسی چیز کو پیدا کرے، اور کسی ایسی چیز کو پیدا کرے جیسی چیز پہلے نہ ہوئی ہو۔ اور معید کون ہے؟ جو کسی ایسی چیز کو پیدا کرے جس کی نظیر اور مثیل، یعنی نظیر نظر سے اور مثیل مثل سے پہلے تخلیق پا چکی ہو۔ قرآن پاک میں معید کا لفظ نہیں آیا، لیکن اس کے افعال آئے ہیں۔ مثلا ثم نعیدہ المبدی بھی نہیں آیا، یعنی یہ دونوں نام بظاہر نہیں آئے المعید اور المبدی کی صورت میں، لیکن ان کا تذکرہ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں جی، اللہ مبدی اس لیے کہ اس نے تخلیق کی، اور معید اس لیے کہ وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ لیکن اگر غور کیا جائے نا، تو اس عالم میں اللہ تعالیٰ مبدی بھی ہے اور معید بھی ہے۔ کیسے؟ مثلا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مبدی بنے، پھر ان کے نمونے پہ ان کی اولاد کو پیدا کیا تو معید بنے، ہے نا بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ المبدی ہیں آدم علیہ السلام کے ناطے سے، اور المعید ہیں انہی کی نسل کو پیدا کرنے سے۔ یہ ایسے ہی نا جیسے ایک دفعہ ایک سانچہ بنتا ہے، پہلی دفعہ سانچے کا بننا کیا ہے؟ مبدی۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ مبدی۔ اور دوسری دفعہ کرنے والا کون ہے؟ اسی کام سے پھر کرنے والا معید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ نئی شان والا ہے۔ دیکھا جائے تو مبدی ہے وہ ذات جو حالات اور مخلوقات کو ہر روز لوٹاتا ہے، تو معید بن جاتا ہے۔ ہر روز موسم کا معید ہے وہ، فصلوں کا اعادہ کرتا ہے، ہے نا؟ اس کی دونوں چیزیں جڑی ہوئی۔ آج فصل اگی، موسم چلا گیا، अगले साल फिर उसी फसल का मोहित है वो ज़ात। तो लिहाजा अल्लाह ताला की सिफत को सामने रखते हुए अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है। इंसान की तख्लीक के सारे मराहिल को अगर सामने रखे ना, तो आप देखिए कि इंसान की हैरत गुम हो जाती है। किस तरह एक औरत के रहम में नुतफ़ा, फिर उसका ठहरना, फिर पेट के अंदर बच्चे का बढ़ना, और फिर बच्चे का एक ज़िंदा जीते जागते इंसान की सूरत में दुनिया में आना, वो सारी कुव्वतें और काबिलियतें उसके अंदर आ जाना जो उसकी माँ में थी या बाप में थी। और बाज़ दफ़ा तो माँ बाप में तो दूर दूर तक वो चीज़ नहीं होती, कहाँ पिछली कई नस्लों पहले की कोई सिफत लेके बच्चा आ जाता है। ये अल्लाह ताला का इख्तियार है। हमारी इब्तदा का सिरा भी अल्लाह के हाथ में और हमारी इंतहा का सिरा भी उसी के हाथ में। अगर हम अपने आप को खुद ही अपने मुखलिस करके सोचें ना, तो अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहा है अलमुबदी होने में और अलमोईद होने में, और वो क्या है कि तुम अल्लाह के आगे झुक जाओ। ना तुम्हारा अपनी पैदाइश पे काबू है और ना तुम्हारा मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाने में कोई इख्तियार है। तुम्हारी सारी नियाजमंदियों और तुम्हारी बंदगियों का हक किसको पहुँचता है? ये अल्लाह ताला को पहुँचता है। लेकिन वो लोग जो अपने हाथ में ये सारी चीज़ें रखते हैं या समझते हैं, फिर वो लोग कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात का हक नहीं अदा कर सकते। अब देखिए कि इंसान कोई चीज़ ईजाद करता है ना, तो शुरू में दुश्वार होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आसानी से बनने लगती है। पहले घड़ी मुश्किल थी, फिर घड़ी बनी, अब हर दूसरी कंपनी घड़ी बनाने में मारूफ हो चुकी। किसी ने इंजन बनाया तो कैसे दिमाग लड़ाया, अब बनने कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, बनी हुई चीज़ में इजाफे हो सकते हैं। पहले एक मॉडल था तो बेसिक्स था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसमें और बहुत सारी चीज़ें डाल दी। तो क्या अल्लाह ताला अलमुबदी है जिसने इस मौजूदा हालत में इंसान को पैदा किया? तो सवाल पैदा होता है कि कल जब एक इंसान दूसरे जहान में पैदा किया जाएगा, तो अल्लाह ताला का अलमुईद होना वहाँ उसके लिए क्या इन्हीं सिफात तक उसको रखेगा या उसकी सिफात को बढ़ाएगा? बड़ा रकीक सा नुक्ता है, मैं दोबारा बोलती हूँ, सोचिएगा इस पे। हम अहदीस की रोशनी में ये बात जानते हैं कि कल दूसरे जहान में जब इंसान उठेंगे ना, तो उनकी सलाहियतें बढ़ चुकी होंगी। जैसे रिवायत में आता है कि एक जन्नती मर्द को दुनिया के कई मर्दों जैसी ताकत दे दी जाएगी, क्योंकि वहाँ जब लज्जतें ज़्यादा हैं, नेमतें ज़्यादा हैं, तो उसको इंजॉय करने की सलाहियत भी ज़्यादा होनी चाहिए। कई मर्दों की कुव्वत मिल जाए तो एक मर्द को दे दी जाएगी। बस लोग इस पे एतराज़ करते हैं, ये कैसे हो सकता है? इसी तरह रिवायात में आता है कि कद बढ़ जाएंगे, कई कई फुट लंबे होंगे। बस जगह आता है कि दांत बड़े हो जाएंगे, जिस्म बड़ा होगा, जहन्नमियों को अजाब देने के लिए उनके जिस्मों को मोटा ताज़ा कर दिया जाएगा। तो अगर किसी के दिल में हल्का सा भी शक है ना, तो वो दुनिया किसी मिसाल को सोच ले कि जब कोई कंपनी इब्तदा में कोई कंप्यूटर बनाती है, तो वो बिल्कुल बेसिक चीज़ों को पूरा करता है, लेकिन अगला मॉडल क्या लिखा होता है? इम्प्रूव्ड। फिर अगला मॉडल, और हर नया मॉडल पहले से इम्प्रूव्ड होता है। यही तो इश्तिहार दिखा दिखा के हम लोगों को परेशान करते रहते हैं ना। हर 2-4 माह के बाद सेलफोन बदले जाते हैं। किसी ने मुझे कहा कि बस कुछ माह के बाद इनको नया सेलफोन चाहिए। क्यों? पहला अब वो नहीं रहा जो दूसरे में आ गया। बच्चे बच्चे के हाथ में ये चीज़ देखी गई। तो जो ज़ात दुनिया में एक इंसान को सिंपल उसकी सारी सिफात के मुताबिक जो उसकी इस दुनिया में दरकार थी वो दे के पैदा कर सकता है, तो ज़रा सोचिए तो सही, कल के इंसान को फिर वो मोटा ताज़ा लंबा चौड़ा क्यों नहीं कर सकता? आज दुनिया की औरत को मिट्टी की औरत बना के भी इतना हुस्न दे सकता है, तो कल उसको शीशे और क्रिस्टल की डॉल क्यों नहीं बना सकता? ये उसकी सिफात है, इस पे कोई इंसान शक नहीं कर सकता। जब कुरान पाक में ये दावा होता है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, कुफार ने इस पे बहुत शक किया था, ताज्जुब किया, ये कैसे हो सकता है? आप पढ़ के देखिए मक्की सूरतों में बार बार वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये मरने के बाद कैसे होंगे, हमारी हड्डियाँ चूरा चूरा हो जाएंगी, हम कब्रों में जाएंगे, फिर ये कैसे लौटेंगे? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बताओ, सूरत अन्नमल आयत 64 में आता है, अम्मा यब्दउल खल्क थुम्मा युईदुह, और वो कौन है जो खल्क की इब्तदा करता है फिर इसका इयादा करता है। कितनी सादा सी बात है, एक जुमले में बयान कर दी, अपने अंदर इतनी तफसीलात रखती हैं कि एक इंसान अगर इसकी गहराई में उतरता जाए तो उतना ही उसको अल्लाह तआला की ज़ात और उसके एक होने की गवाहियां मिलती जाएंगी। पहले तो बजाय खुद तख्लीक को ही देखिए, एक इंसान का इल्म आज तक ये राज नहीं पा सका कि जिंदगी कहाँ से और कैसे आई। इस वक्त तक साइंस भी यही कह देती है कि एक बेजान मादे की महज तरकीब से खुद बहुत जान नहीं पड़ सकती उसमें, उसके लिए कुछ मराहिल दरकार है। माँ के पेट में बच्चे के जो मराहिल है, क्या ये इत्तफाकन हो रहे हैं, ये खुद ब खुद हो गया? नहीं हो सकता। जिस जात ने दुनिया में एक नुतवे को एक खूबसूरत इंसान की शक्ल दे दी, उसी से फिर आज देखा गया कि नुतवा भी जानदार है क्योंकि उसके अंदर भी सेल्स हरकत करते हैं। तो सोचिए कि फिर वो जात एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ, एक किस्म को दूसरी किस्मों से मुख्तलिफ नहीं बना सकती। सिर्फ इंसानों की किस्में देख लें, कहीं आपको इतना गोरा मिल जाएगा कि दूर से दिखे कि जैसे कोई शायद चांदी या शीशे की बनी हुई या दूध की बनी हुई कोई चीज़ है, और कोई इतना स्याह होगा कि उसके फीचर्स भी ना दिखें। इंसानों को देखें, जानवरों को देखें, कितनी किस्में हैं ना। पूरी ज़मीन पे हैवानात की तकरीबन 10 लाख और नबातात की तकरीबन 2 लाख किस्मों का पता चला है अभी तक। ये सब कैसे हो गई? ये अलमुबदी का कारनामा है। उसने सिर्फ इंसान को बना के अपने आप को अलमुबदी साबित नहीं किया, फिर उसने भैंसों, गाय, बकरी, कितनी किस्में, उनको देखो। मुझे अपने ट्रैवल के दौरान किसी जगह बहुत करीब से भैंस को देखने का इत्तेफाक हुआ, यानी करीब से मेरा ये कि दूर दूर से तो हम अक्सर ही देखते ना, लेकिन कुछ ऐसा बना मामला कि बिल्कुल करीब से देखा। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा भैंस को इस तरह देखा जो मैंने पहले नहीं देखा था कभी। मैं उस वक्त सोच रही थी कि अगर इसकी जो शक्ल है बिल्कुल इसी शक्ल की कोई एक औरत हो। आप देखते हैं कि उसका चेहरा जो होता है ना, वो अगर आप उसको जियोमेट्रिकल ड्रॉ करें ना तो ट्रायंगल बनती है, पीछे चपटा होगा हिस्सा और आगे बिल्कुल उसकी थोथनी सी बन के नाक लग जाता है। शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं। अमूमन चेहरे चपटे होते हैं, फीचर्स उस पर नुमाया होते हैं, लेकिन भैंस का पूरे का मूरा मुंह जो है ना, वो एक ट्रायंगल, जिसको आगे से जिसकी नोक काट के वहाँ होंठ और नाक लगा दिया जाए, बीच में मोटी मोटी आंखें। मैं सोच रही थी ये काली है ना, गोरी ही होती चलो, और हम सब की शक्लें ऐसी होती, हम कैसे लगते? झुरझुरी आ रही थी सोच के। पीछे धड़ को तो छोड़ दें, सिर्फ चेहरे की बात कर लें, उसकी गर्दन देखें, उसके नीचे लटकती हुई खाल, अल्लाह की ज़ात को देखिए। इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि अल मुबदी किस किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को पैदा करता है, और कोई एक चीज़ दूसरी तरफ नहीं जाती। अल्लाह अकबर। आज डीएनए का नाम लेकर सब कुछ चुप करा दिया जाता है कि बस अंदर डीएनए है, उसी से सब बदल जाता है। ये वो चीज़ है जो जिंदा खुलिए हैं वो आगे से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये डीएनए किसने बनाया? क्या डीएनए की डिस्कवरी अल्लाह के अलमुबदी होने पे गौर करने से रोक लेगी? हरगिज़ नहीं। उसने ये सब कुछ करके दिखा दिया कि वो कल एक और जहान बनाएगा और वहाँ भी वो नई शक्लें पैदा करेगा। और आपको पता है कि अल्लाह के अलमुबदी होने ने डार्विन के नज़रिए को रद्द भी कर दिया। क्यों कहते हो कि इंसान बंदर था, होते होते इंसान बन गया? क्या अलमुबदी जो बंदर को बना सकता था अब एक इंसान को नहीं बना सकता? तुम बंदर और इंसान के बीच की एक चेन तो आज तक नहीं मिला सके कि बदला कैसे, हुआ कैसे, कैसे एक किस्म दूसरी किस्म में बदल गई? आज फॉसिल्स का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। किसी सूरत में कोई नहीं कह सकता कि एक इंसान किसी जानवर से बदल के इंसान बन गया तो बात यह के मान जाओ। اصل مصور کو مان جاؤ، الخالق کو مان جاؤ، الباری کو مان جاؤ، جس نے انسانوں کو باقی ساری قسم کی مختلف چیزوں کو پیدا کر کے ثابت کر دیا کہ جو کچھ پیدا کرتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پیدا کر سکتا ہے. کبھی آپ غور کر کے دیکھیے گا، اتنی مختلف قسمیں کہ انسان حیران رہ جائے، پریشان ہو جائے، کیسے اس نے ایک انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا. اور اس پہ غور کرے انسان تو بہت زیادہ غور کر سکتا ہے، تدبر کر سکتا ہے. ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، نہیں پڑھا تو جنہوں نے پڑھا نہیں اللہ ان کو بھی پڑھنے کا موقع دے، تیسرے پارے کے بالکل آغاز میں، کہ کیسے ایک بستی سے گزرے، فلسطین آئے، تعجب کیا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے روح کو قبض کر لیا، ان کا گدھا بھی وہیں مر گیا، 100 سال تک وہیں پڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب زندہ کیا تو کہا بتاؤ یہ گدھا تو گل سڑ گیا مگر کھانا نہیں سڑا، اور تم زندہ کرے گے. بظاہر دیکھیے کہ زندہ ہونا مشکل لگتا ہے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ المبدی ہے تو وہ معید بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی کے ساتھ اگلا واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تناظر میں، 4 قسم کے پرندوں کو لو، ان کا گوشت کاٹو، ان کو قیمہ قیمہ کر دو، اور پھر گوشت کو ملا دو، پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دو، اور ان کو بلاؤ وہ تمہارے پاس آ جائیں گے. اسی طرح سورت آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ملتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. ایسے معجزوں کی طاقت ایک انسان کو دی جا سکتی ہے تو وہ ذات تو اس سے بہت بڑی ہے. کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑھی کے مریض کو اچھا کر لیتے تھے، اندھے کو بینا کر دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، کھجور کے تنے کا رونا، یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کے المبدی اور المعید ہونے سے تعلق رکھتا ہے. سورت کہف میں آپ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، اصحاب کہف 100 سال تک سوتے رہ گئے پھر بیدار ہوئے. یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ قادر ہے. آج موجودہ ریسرچ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کی ماہیت جو اس کی روح فنا نہیں ہوتی، ہمارا جسم فنا ہو جاتا ہے بظاہر، یعنی اس کی روح چلی جاتی ہے، اور جسم کو ہم ایک مردہ شکل میں مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں، لیکن جسم موجود رہتا ہے، اصل چیز جو ہے وہ روح کی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایک انسان ایسی ایسی تمام چیزوں کو پہ جب غور کرتا ہے نا، تو پھر اس کو واقعی یقین آنے لگتا ہے کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے المبدی اور المعید ہونے پر ایمان لا سکیں. کیسا ایمان؟ جو ہمارے عمل کو بدل دے. اس پہ عمل کیا کریں؟ سوچیے ذرا، اللہ تعالیٰ تو المبدی اور المعید ہیں، تو ہمارا بھی تو کوئی تعلق ہونا چاہیے نا اس کے ساتھ. تھوڑا سا اس پہ عمل کے لیے دونوں کو اکٹھا لینے کے ساتھ المعید پہ الگ سے بھی بات کرنا چاہوں گی. سورت یونس کی آیت 4 میں آتا ہے انہو یبدو الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو فنا کرتا ہے. تو یہاں جیسے المبدی کا لفظ دیکھا تھا ہم نے، اسی طرح معید کا دیکھا. اب آپ دیکھیے کہ مبدی کی بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو، کہ ٹھیک ہے ہاں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن معید پہ غور کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ جہان آنکھوں سے اوجھل ہے. اور یہ جو جملہ ہے نا کہ وہی زندہ کرتا ہے پیدائش کی ابتدا اور وہی اس کو پیدا کرے گا دوبارہ، یہ دعویٰ اور دلیل دونوں کا مجموعہ ہے. یہ ایک جملہ دعوے اور دلیل کا مجموعہ ہے. دعویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا، اور دلیل کیا دی؟ کہ اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. جو شخص یہ مانتا ہے نا کہ اللہ نے خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ عقل کے بھی سراسر مطابق ہے، یہ انصاف کی روشنی میں بھی یہ لازم تھا کہ وہ مبدی معید بھی ہو. क्योंकि दुनिया में जिन लोगों ने अल्लाह की बात मान के ज़िंदगी गुजारी, क्या उनको एक दूसरे जहान में न रखा जाए, न पैदा किया जाए जहाँ उनको उनके अमाल के अच्छे और बुरे बदले दें? इस पे बहुत तफसील से बात हो सकती है, लेकिन कुरान की तफसीर में अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजू बड़ी तफसील से डिस्कस होता है, क्योंकि मक्का वालों के अकायद में एक बुनियादी अकीदा था कि वो ये नहीं मानते थे कि मरने के बाद जिंदा होंगे। देखा जाए तो मानते आज के भी लोग कमी है अमल के साथ। एक दफ़ा यकीन आ जाए ना कि ये दुनिया तो कुछ भी नहीं, असल तो कल की दुनिया है, तो गम तो आधे यहीं दूर हो जाएंगे। और सरकशियों के कितने प्लान्स हैं वो यहीं छोड़ दिए जाएंगे कि छोड़ो क्या करना है, 4 दिन की तो बात है। फिर आप देखिए कि इस कायनात में आपको अल्लाह तआला के हर काम हर तरफ नज़र आ रहे हैं, मसलन सूरज चाँद रात दिन आना जाना। इससे क्या सबूत मिलता है कि अल्लाह की ज़ात कोई छोटी ज़ात नहीं है, ये कोई बच्चे का खेल नहीं है। ये खेल खेलने के लिए दुनिया नहीं बनी कि दिल भर गया तो उसको ख़त्म कर दिया और तोड़ फोड़ के रख दिया। हिकमत है, मसलियत है, ज़र्रे ज़र्रे की पैदाइश में एक मकसद है और वो हकीम है, उसकी हिकमत के आसार हैं इस दुनिया में। उससे कैसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो इंसान को अक़ल दे, उसको एक हसास इंसान बनाए और मरने के बाद दोबारा कोई दुनिया ना हो और ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि जैसे बेकार किसी को छोड़ दिया जाता है। दूसरी दुनिया की ज़िंदगी एक इंसान का हक है। आप मेहनत करते हैं इस दुनिया में, क्या आपका हक नहीं बनता कि आपको उसका बदला दिया जाए? बस दफ़ा लोग नेकियों से भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ ना कुछ असरात नेकियों के दुनिया में उनको मिलते ही हैं, लेकिन इसके बाद उनको मुकम्मल जज़ा के लिए एक दूसरी दुनिया की ज़रूरत पेश आती है। इसी तरह कुछ लोग दुनिया में गलत काम करते हैं फिर भी कोई इतनी सज़ा नहीं पाते, तो क्या उनको फिर दोबारा पैदा नहीं किया जाना चाहिए? तो इस पे इंशाल्लाह ताला हम अपने तफसीर के सेशन में मज़ीद तफसील से भी बात कर सकते हैं किसी मौके पे। ख़ास तौर पे मक्की सूरतों में ये बात जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा तफसील से आ जाती है, अल्लाह ताला की इन सिफ़ात का तذکرہ सूरत अल-अंबिया की आयत 104 में भी होता है, यौम नतवि समा कतई सिजली लिल कुतुब। वो दिन जबकि आसमान को हम यूं लपेट कर रख देंगे जैसे तूमार में और आँख लपेट दिए जाते हैं। जिस तरह पहले से तख्लीक की इब्तिदा की थी, इसी तरह हम फिर इसका एआदा करेंगे। कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहू वादन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन। इसी तरह सूरत अनकबूत की आयत 20 में भी आता है, कुल सीरु फिल अर्दि फंजुरु कैफ बद अल खल्क थुम्मा अल्लाहु युन्शियु नशअत अल आखिरा इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इनसे कहो कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खल्क की इब्तिदा की है, फिर अल्लाह दोबारा भी ज़िंदगी बख्शेगा, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और सूरत अनकबूत ही की आयत 19 यानी 19 में आता है, अवलम यरौ कैफ युब्दिउल्लाहुल खल्क थुम्मा युईदुहु इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। क्या इन लोगों ने कभी देखा नहीं कि अल्लाह ताला किस तरह तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर इसका एआदा करता है? यकीनन ये एआदा तो अल्लाह ताला पर आसान है, यानी दोबारा पैदा करना अल्लाह ताला को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम अपने लिए इन सारी बातों से क्या लेंगे, एक बस हवाला और नोट कर लीजिए, सूरत रोम की आयत 37 37 नंबर आयत में भी आता है, वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ थुम्मा युईदु वहुव अहवनु अलैह। वही है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर वही इसका इयादा करेगा और ये बात उसके लिए आसान तर है। तो हमारा इस नाम के साथ ताल्लुक़ क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि इस पर ईमान लाना चाहिए कि एक इंसान अल्लाह ताला के अल-मुबदी होने की वजह से इस दुनिया में मौजूद है। फिर दूसरी बात ये है कि हमें क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिविटी क्या होती है? कि इंसान अपने आइडियाज़ लेकर आए नए से नए तरीके से। बस दफ़ा लोग ऐसी चीज़ें खुद नहीं कर पाते तो दूसरों का मुंह देखते रहते हैं, कोई कर लेगा तो हम कॉपी कर लेंगे, अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते। फिर अगली बात इससे जो हमें अपने लिए मिलती है वो क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात के इस एंगल के साथ मोहब्बत करते हुए हमें इस कायनात की इब्तिदा और इंतहा पे नज़र रखनी है, गौर करना है कैसे नहीं थे और बना दिया, और आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। तो इस नाम के ऊपर गौर करके हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली तौर पे भी बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, यानी मैंने नहीं रहना, आज हूँ कल नहीं होंगी, कल नहीं थी आज हूँ, इसी तरह आज हूँ तो कल नहीं रहूँगी। तो बस बात समझ लीजिए कि यही सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।